और राजेश्वरी बहाम हर बाबा के कमरे में घुस गया
जहन जा
वो लॉक लगा हुआ
ओ बाबा ने कहा बाप रूहानी सर्विस पर है, नीचे को बाबा ने कहा बाबा रूहानी सर्विस करो, बच्चों की मुरली मिस ना हो, उसके लिए क्या अगर ब्रह्मा बीमार है तो क्या करते हैं? रुको संतोष, अगर ब्रह्मा बीमार है तो संजय भाई बाबा क्या करते हैं ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो? तो बाबा ब्रह्मा के तन में आती है क्योंकि मुख नहीं चलता है, इसका मुख नहीं चलेगा, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं मैं इसके तन में आके क्या करता हूँ मुरली लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। हाँ छोटा फूटा कैसे भी बाजा कोई भी बाजा उसको चलेगा, तो बच्चों की मुरली मिस ना हो। मुरली क्या है? ब्राह्मणों के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था श्वास है, खुराक है, लाठी है, इस लाठी को पकड़ पकड़ के तुम
पहुंच जाओगे
परम धाम पहुंच जाओगे और अपने घर में आ जाओगे। तो मुरली एक जैसे कि लाठी है। कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने बोला मुरली क्या है? खजाना है। परसों
ज्ञान, हाँ ज्ञान।
तो बाबा को याद करते रहो, अंत तक याद करते रहो। ज्ञान के कोयले, इस मुरली में हफ्ते में बाबा ने कभी बोला था ज्ञान क्या है?
कोयला,
सैक्रीन, ज्ञान की एक बूंद बस, ज्ञान की एक बूंद बस। तो सैक्रीन क्या होती है? मीठी होती है, एक बूंद भी बहुत मीठी होती है। तो मुरली भी कैसी है? मीठी है। लास्ट हफ्ते में था ना स्वीट स्वीट स्वीट, बात है स्वीट का पहाड़, सब स्वीट स्वीट स्वीट, हर चीज स्वीट। तो मुरली पढ़ना, मुरली अध्ययन करना, मुरली लिखना, मुरली रिवाइज करना, मुरली की चर्चा करना, यह है ब्राह्मणों का कर्तव्य। एक मुरली में बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों के कर्तव्य में आता है, परम कर्तव्य समझ लो। तो ज्ञान का मनन करना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान की चर्चा करना, लेन देन करना, स्पिरिचुअल लेन देन। अभी परसों सैटरडे की मुरली में था ना, फ्राइडे की, स्पिरिचुअल लेन देन है। बाप तुमको आत्मा देखते हैं, बच्चों को, बच्चे बाप को आत्मा देखते हैं। तो ये है ज्ञान की स्पिरिचुअल लेन देन। तो एक दूसरे से स्पिरिचुअल लेन देन करनी है हमको, हमारे ज्ञान के लेवल को बढ़ाना है, स्थिति की स्टेज को, ग्राफ को भी ऊपर ले जाना है, ठीक है? तो एक हफ्ते का मुरली रिवाइज करेंगे पहले। बोलो क्या क्या याद है किस किस को इधर से एक हफ्ते में बाबा ने, आज का नहीं, आज का छोड़ दो,
एक छह जो भी बोला, सात कुछ
आठ नौ दस ग्यारह मंडे से लेके तो सैटरडे तक। माता जी क्या बोला? हाँ नहीं सकती, नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो माया आ नहीं सकती। किसकी सभा में बैठे? किसकी सभा में बैठे? बबूलनाथ। तो इस सभा में कोई भी पतित आ नहीं सकता, बाबा ने वार्निंग दी वहाँ पे, एक समय आएगा कि कोई भी पतित यहाँ नहीं आ सकता। अभी ये हफ्ते की मुरली में है, एक ऐसा समय आएगा कि कोई भी पतित यहाँ आ नहीं सकेगा। मधुबन क्या है? शीश महल बन जाएगा। आज भी मधुबन निवासियों को याद किया ना, कभी बाबा ने कहा था मधुबन महान भूमि है, तो मधुबन में रहने वाले भी सभी आत्माएं क्या हो गए? महान आत्माएं हो गए। तो ऐसे अपने आप को महान आत्मा समझते हो, ऐसी ये महान भूमि है। आज बोला वाइब्रेशन, वायुमंडल और भूमि, ये तीन चीज, भूमि भूमि का भाग्य है, वायुमंडल का भाग्य है, वाइब्रेशंस का भाग्य है। यहाँ पे बैठ
जाए,
वहाँ बैठ जाए। वो नहीं है, वो लॉक है बोल रहे,
वो लॉक है।
तीन चार लेके आ जाओ।
सुनो हरी उधर नहीं, हरी
हरी भाई
इधर नहीं है। हाँ मेरे ब्रदर चिंता हुआ, पीछे से ले आओ, छः सात से आओ, क्योंकि जहाँ जहाँ चलाए वहाँ रखेंगे। ये ऐसा नहीं कि इधर
तो मधुबन में रहने वाले, क्योंकि मधुबन महान भूमि है, तो वहाँ रहने वाले भी महान आत्माएं हैं। जैसे भारत के बारे में बोला ना, उस स्थान का भी महत्व है, उसको भी समान की नज़र से लोग देखते हैं। जहाँ से पूर्वज है, पूर्वजों का जो स्थान है वो भी महान है। तो मधुबन तो सबसे महान है, मधुबन की भूमि तो संसार में सब जगह है, पर उनको उसका नाम पता नहीं कि जहाँ भगवान आते उस भूमि का गायन तो हर शास्त्र में है। कभी वो उसको अयोध्या कह रहे हैं, तो कहीं उसको वृंदावन कह रहे हैं। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा।
हाँ तो हमारा
कौन कौन जन्म जन्म हाँ, कई सालों पहले मधुबन में कुछ वैज्ञानिक लोग आए थे, तो उन्होंने वो वाइब्रेशंस टेस्ट किए थे भूमि के। तो कुटिया से लेके तो शांति स्तंभ तक, वो जो एरिया उतना, कुटिया से लेके तो शांति स्तंभ तक, उन्होंने उनके रिसर्च से ये बताया था कि इसके जो वाइब्रेशन थे इस एरिया के, इतने इतने वाइब्रेशन संसार में और किसी एरिया के नहीं, इतनी पावरफुल वाइब्रेशन। तो वहाँ से लेके तो शांति स्तंभ तक वो जो है, क्योंकि उसी एरिया में बाबा शायद वहीं से बहुत बार चलते थे, वही तपस्या का पूरा स्थान है जैसे पैच है। तो वहाँ के जो वाइब्रेशन थे, आज भी बोला ना मधुबन में होते, तो वायुमंडल वाइब्रेशन और भूमि, ये तीन का भाग्य केवल यहीं रहने वाले के लिए है। तो और क्या बोला एक तो? धरना की है तो दूसरों को पढ़ाओ। तो बाबा ने कहा कि बाप जैसे टीचर है, तुम्हें भी रूहानी टीचर बनना है मंडे। समय तुम्हारी रचना है, समय रचना है, हम रचता है। आज भी बोला ना, प्रकृति तुम्हारी रचना है, हम रचता है। तो समय हमारा शिक्षक ना बने, हम समय के शिक्षक हैं। तो मास्टर विश्व शिक्षक बनो मंडे। और आप तो माँ भाई को देख कर दो, दो तीन मुरलियाँ जिसके ऊपर दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, बहुत सारे फायदे गिनाए बाबा ने उसमें।
उधर हॉल बंद है,
फ्राइडे की मुरली थी ना। अनुभव होगा उसके पहले आत्मिक दृष्टि पर आते हैं। आत्मिक दृष्टि से क्या क्या होता है, सात आठ बातें थी बोली,
जाति पाति भेदभाव सब मिट जाते हैं।
वो है पहले मुरली का फिर बाहर का, ये ब्रह्मा बाबा का मार। तो आत्मिक दृष्टि फ्राइडे की मुरली थी पूरी, छात ने आठ बातें
आगे आगे कर लो। अरे भाई आगे आओ, कुर्सी आगे कर लो,
इधर आ जाओ। हाँ, ज्ञान में जोहर भर जाएगा और तीर लगेगा आत्मा को। एक और क्या होगा आत्मिक दृष्टि से, बुरे संकल्प समाप्त हो जाएंगे। दूसरे, माया के तूफान कम आएंगे। तीसरा, चौथा, अधिंद्रिय की चंचलता कम हो जाएगी। हाँ, क्रिमिनल आय समाप्त हो जाएगी। और पक्की आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा इस नई आदत को डालो, सबको आत्मा देखने की आदत, अगर इतनी भी करो ये भी आदत अगर हो जाए तो इतनी सारी बातें हो जाएगी, किसी को तीर लग जाएगा, ज्ञान में जोहर भर जाएगा, ऊंच पद पाओगे, राज्य भाग्य पाओगे, नई आदत पड़ जाएगी, क्रिमिनल आए समाप्त हो जाएगी, देहभान निकल जाएगा, माया के तूफान कम हो जाएंगे, इंद्रियों की चंचलता कम हो जाएगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, लास्ट हफ्ते में बोला था ना, विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, आत्मिक दृष्टि होगी तो किसी को भी देखते हो तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा देखना है। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर स्वयं के देह को भी देखना नहीं, ना स्वयं के देह को देखना है ना दूसरे की देह को देखना है, देह की दूसरे की देह की भी याद ना है तो स्वयं की देह की क्या बात कर रहे हो, स्वयं की देह की भी याद ना है दूसरे की देह की भी याद ना है, स्वयं की देह को नहीं देखना है दूसरे की देह को देखना है, दूसरे की देह को अगर संकल्प और नजर से भी टच करते हो, महा 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 तीन बार पाप है,
तीन बार
तो ये भी महा 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 पाप है। किससे देखते हो तो संकल्प से और नजर से टच करते हो खाली, तो वो भी महापाप है। तो ब्राह्मणों के कायदे कानून बहुत कड़े हैं, बहुत कड़े। अगर हमको पता ही नहीं और गलती हो गई और फिर हमने बोला हमको पता नहीं था तो इसको मानेंगे क्या भाई, हम रास्ते के राइट साइड से चल रहे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया कि क्यों चल रहे हो, हमने कहा कि मुझे पता नहीं था लेफ्ट से चलना पड़ता है या लेफ्ट से गाड़ी चलानी होती है तो मानेंगे? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नोबडी। इग्नोरेंस लॉ के बारे में न जानना उससे मुक्त नहीं हो सकते आप सदा से। तो आत्मिक दृष्टि का बहुत महत्व है। जब तुम आत्मा देखते हो तो दूसरे को क्या देते हो, करंट देते हो। बाबा के जब जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो उसको करंट देते हो। हम किसी को आत्मा देखते हैं तो वो हमको देह नहीं देख सकता, फिर वो भी हमको देह ही देखेगा, हमको आत्मा ही देखेगा, वो हमारी देह में आकाशक्त नहीं हो सकता है। अगर हम उसको आत्मा देखेंगे तो हम उस बाबा ने कहा ना, मैं सबको अकाल तख्त पर भ्रुकुटी के बीच में अकाल तख्त पर आत्मा को देखता हूँ, मैं आत्माओं से बात करता हूँ, मैं देह को नहीं देखता। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, बच्चे बाप को देखते हैं, ये है रूहानी लेन देन। स्पिरिचुअल लेन देन आत्मा की दृष्टि से। तो बहुत सारी हफ्ते में दो तीन बार बाबा ने इस बात को बोला है, भाई भाई को देखो, तुमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाना है। इसी और एक मुर्गी में कहा था, हाँ तुमको ब्रह्मा कुमार और कुमारी इस स्टेज से भी ऊपर जाना है। तो सबको आत्मा देखने का अभ्यास, संकल्प करना है कि आज मैं इतनी लोगों को आत्मा देखूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आज मैं 10 लोगों को आत्मा देखूंगा, आज मैं 20 लोगों को आत्मा 20 को आत्मा देखूंगा, जो भी दिखे उसको आत्मा देखना, चलते फिरते जो दिख रहा है उसको आत्मा देखना है। बस नीचे जहर है, सांप है, वो काट लेगा, देखना ही नहीं है। और क्या बोला? हाँ वैसे भी तुम पुराने शरीर, तो सांप जब खाल छोड़ता है उसकी खाल जो होती है ना, जितनी खाल वो छोड़ता है उसके इतनी अगर साइज है तो इतनी खाल उसके डबल खाल छोड़ता है, क्योंकि हाँ लेंथ उसकी उससे डबल हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी के जो स्केल्स रहते हैं ना उसके ऊपर स्किन रहती है, तो स्किन से ऊपर रहता है नीचे रहता है दोनों जगह रहता है, इसके लिए खाल जो निकलती है उसकी इतनी होगी तो उससे डबल होगी। तो बाबा ने कहा उसको खुशी होती होगी, उसको दुख होता होगा क्या? नहीं, उसको खुशी होती होगी। प्राणियों के भी बारे में बाबा ने बहुत सारी बातें कही है। कई लोग कहते हैं बाबा जानवरों के बारे में बहुत कम बताते हैं, तो यहाँ तो उसकी भावना के बारे में कहा ना बाबा ने, उसको खुशी होती होगी मतलब उसके बारे में कह रहा है। तो जानवरों के बारे में बहुत सारी बातें कही है बाबा ने। सर उसको अलग 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 क्योंकि वो केवल मनुष्य आत्माओं का पिता नहीं है, सर्व योनियों की सर्व आत्माओं का पिता है। सांप को याद करता है कभी, कभी पपीते को, झाड़ को याद करता है, कभी किसको याद करता है। हाँ बहुत सारे हर प्राणियों को, कितने प्राणियों को बाबा ने मुरलियों में याद किया, घर को याद करता है कभी। चलो और क्या बोला, एक तो ये पॉइंट नहीं, पहले खुद माइंड बनना है और दूसरों को माइंड बनाना है, वो एक स्लोगन। और भू भू करते रहना है। और जहान का कुर्बान करो, कौन सा संतुष्ट तो तुम कौन हो? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता है? एक जगह रहता है और दूर दूर की आत्माओं की सेवा करता है। वैसे तुम भी लाइट हाउस बनकर विश्व सेवा के निमित्त बनो, दूर दूर की आत्माओं को सेवा करो। उसके लिए स्वयं में लाइट माइट से संपन्न बनो, संपन्न रहने की आवश्यकता है। उसकी दो विधि बताई बाबा ने। सबसे पहली विधि है मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, और दूसरा था मन मना भाव, जिसका श्रेष्ठ साधन मंत्र है, श्रेष्ठ शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, इन सब के आधार से मनसा सेवा सहज हो जाएगी। तो मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, जहाँ जहाँ से व्यर्थ आता है उन सब को बंद करना पड़ेगा। मनसा सेवा हर आत्मा नहीं कर सकती, जो बहुत ज्यादा व्यर्थ में है वो मनसा सेवा नहीं कर सकती कभी भी। मनसा सेवा के लिए स्थिति बहुत शक्तिशाली चाहिए, हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, राजा को बुद्धि भटकाए नहीं, स्वराज्य अधिकारी निरंतर योगी, जो संकल्प करना चाहे वो संकल्प करे, जहाँ बुद्धि टिकाना चाहे वहाँ टिकाना टिका सके, वो है निरंतर योगी, वो है स्वराज्य अधिकारी। बुद्धि तुम राजाओं को भटकाए नहीं, बुद्धि का भटकना बंद, मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त एकाग्र, तब मनसा सेवा हो सकती। और मन में शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन हो तो मनसा सेवा सहज है। और खुशी क्या है? जैसे कि खुराक है, ये खुराक कैसी है? नहीं खुराक कैसी है, रुको, हाँ नहीं, पहले खुराक के बारे में,
खुशी खुराक कैसी है,
उसी मुरली में बहुत सारी बातें उसके बारे में। नहीं खुराक कैसी है? जबरदस्त खुराक है, जबरदस्त खुराक है, फर्स्ट क्लास खुराक है। और कैसी खुराक है? ऊंची से ऊंची खुराक, बड़े से बड़ी खुराक। और ये खुराक केवल अविनाशी सर्जन के पास ही है, और किसी के पास ये खुराक नहीं है। और एक चीज उसी के पास है, उसी मुरली में नीचे का पैराग्राफ, मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात केवल बाप के ही पास है, और किसी के पास नहीं है। तो ये खुराक कैसी है? अविनाशी खुराक है, जबरदस्त खुराक है, फर्स्ट क्लास खुराक है, ऊंचे से ऊंचे खुराक है, बड़ी से बड़ी खुराक है। इसके लिए तो गायन में बाबा ने कहा था, गोपी वल्लभ की गोपियों की अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की और गोपियों से पूछो, सदैव हर्षित रहो। कितनी सारी पॉइंट थी खुशी की उस मुरली में, खुशी खैराफत है, बाप का परिचय देना, स्टेट ऑफ वेलबींग, खुशी खैराफत का इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब एक अच्छी स्थिति उसका ऐसा है, स्टेट ऑफ वेलबींग जिसे कहा है वो है खुशी खैराफत, बाप का परिचय देना हर आत्माओं को, क्यों देना, क्योंकि तुमको तीसरा नेत्र मिला है, केवल तुमको ही तीसरा नेत्र मिला है, केवल बाप ने ही तुमको दिया है और किसी को नहीं मिला है,
नहीं
मिल सकता, इसी तीसरा नेत्र से सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। और आप बोलो क्या बोलते थे भाई जी, जैसे जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी तमोगुणी सर्वशक्तिवान बनते जाती है,
बाप को ही रावण के राज्य में आना पड़ता है,
बाप को राम को रावण के राज्य में आना पड़ता है, और देखिए और चिमन भाई बोलो, बहुत सारी पॉइंट्स है ये हफ्ते में मुरली में, अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, ज्ञान का श्रृंगार बाप करते हैं तुमको सबको करना है, और माता जी ने बोला मनोरंजन अनुभव करेंगे, और मुरली से विकर्म विनाश नहीं, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होते, आत्मा पावन नहीं बनती, मुरली सुनने से क्या कमाई होती है, मुरली कोई कहते हैं कि हम याद में है मुरली सुनने समय, बाबा कहते हैं याद में तो सुनना बंद हो जाता है, मुरली तो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब फिर भी एक प्रकार का योग तो रह सकता है उससे,
लेकिन
कवर हम इस सम्मान में है कि बाबा सुना रहे हैं हम सुन रहे हैं तो हल्का एक योग, वो पावरफुल योग नहीं है सर, योग तो फिर भी है,
तो बोला होगा जो योग नहीं करते खाली सीधा,
हाँ वो कहते हैं हाँ तुम क्या योग करते हो, तो बोलते हैं हम मुरली सुनते हैं बस,
उनके लिए बोला होगा,
देश काल परिस्थिति अनुसार हर मुरली चलती है, सामने कौन बैठा है उसके ऊपर से आधार से मुरली चल रही है, हाँ उसमें समान का अभ्यास करो, ये अलग 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 अभ्यास करो, जैसे बाबा उस स्तन में आके मुरली सुना रहे हैं मैं इस स्तन में आके मुरली सुन रहा हूँ, एक मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, दो अलग 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 समान, हाँ गोपी का हूँ गोपी वल्लभ को सुन रही हूँ, अलग 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 समान, टीचर पढ़ा रहा है भाषा बाप तुमको टीचर पढ़ाते, ऐसी लॉटरी तुमको मिली है, देवताओं को भी नहीं है मनुष्यों को भी नहीं है, वाह ना कभी देखा ना सुना, वाह ना कभी देखा ना सुना, बाप पढ़ाते हैं, वाह कभी देखा ना सुना, देवता देवता को मनुष्य मनुष्य को यहाँ भगवान स्वयं तुमको पढ़ाता है, ऐसी लॉटरी तुमको अभी संगम युग पर मिलती है, अचानक से लॉटरी मिल गई, ये दशा है, अपनी दशा को देखकर हर्षित हो, अपनी ही दशा को देख देख कर हर्षित होते रहो, हाँ वहां पर राहु की दशा समझी जाती है किसी का, तुम तो साहूकार हो, तुम पर बृहस्पति की दशा है,
दिवाली दिवाली दिवाली,
तुमको सदैव खुशियां ही खुशियां है, और बाप को याद न करना पड़े सता चीज है, बाबा की याद में आंखों में आंसू आ जाए, बाबा की याद सताने वाली हो, प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए, ये पूरा लास्ट हफ्ते की मुरली में था, और लिंक होनी चाहिए, जैसे सेवा कि लिंक जुटी रहती है वैसे याद की भी लिंक जुटी हो, श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा, इसका बैलेंस, ये बैलेंस होगा तो ब्लेसिंग मिलेंगी और मन से आवाज निकलेगी कौन सी, आशीर्वादों से फल रहे, ये मन से आवाज निकलेगी, और उसी में दूसरा पॉइंट भी था एक, क्या क्यों कैसे इस प्रश्नों से मुक्त प्रसन्न चित, जो प्रसन्न चित है वही सफलता उनको मिलेगी, ये बैलेंस रखना है, और आज की मुरली में कौन सी बैलेंस रखनी है संजय भाई, आज की मुरली में कौन सा बैलेंस है, ना बैलेंस
बैलेंस
बैलेंस बैलेंस, आज की मुरली में भी कुछ बैलेंस, नहीं
यहाँ
सेवा
करनी
है। नहीं पार्टियों से मुलाकात
ये
लास्ट पेज फर्स्ट पैराग्राफ।
सेवा करते हो तो दूसरों स्वयं सेवा और दूसरों की सेवा
स्वयं की सेवा करते करते दूसरों की सेवा भूल तो नहीं जाते हो? दूसरों की सेवा करते हो स्वयं की तो भूल नहीं जाती हो? ये बैलेंस रखना।
इसको कहते हैं विश्व कल्याण,
इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। पूर्व पूज्य में चलो और बोलो। एक हफ्ते की मुरली में हाँ तो क्या कहते हैं वो? तो बाबा कहते हैं ठीक है ऐसे ऐसे भी यहाँ आते तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और ऐसे ऐसे भी यहाँ आते। और नहीं वो आज का है, आज का रुको थोड़ा, आज का नहीं तो हफ्ते भर तो पहले। महावीर कौन है? एक हफ्ते एक एक मुरली जो जो पुरुषा जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और जो बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं वो महावीर है। चलो और देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी ही आकर देते हैं। सारे कल्प में कभी नहीं मिलती है शिक्षा, अभी ही मिलती है फ्राइडे। और ये अच्छा पॉइंट है, जैसे बाप मुसाफिर है वैसे ये देश तुम्हारा नहीं है। बाबा ने क्या कहा? ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम जानते हो कि तुम मुसाफिर हो। तुम मुसाफिर एक ही बार आते हो, बाप भी एक ही बार आता है, ये तुम जानते हो। वैसे तुम जानते हो कम से कम 7-8 बार है उस मुरली में, ये केवल तुम जानते हो, ये केवल तुम जानते हो, ये केवल तुम जानते हो। आत्माएं नंबर वार पाठ बजाने आती है, ये केवल तुम जानते हो। ये विश्व ड्रामा क्या है? बेहद का एक मांडवा है, ये बत्तियां जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है, ये केवल तुम जानते हो। बीज और झाड़ को केवल तुम जानते हो, उस कमाई से क्या होता है और इस कमाई से क्या होता है केवल तुम जानते हो। वो है विनाशी विद्या, ये है अविनाशी विद्या, अविनाशी बाप द्वारा मिली हुई अविनाशी विद्या। वो कौन सी पढ़ाई करते हैं? ICS की पढ़ाई करते हैं, LLB की पढ़ाई करते हैं और बीच में मर गए तो खलास, क्या पद पाएंगे? स्वर्ग कौन बनाता है, नर्क कौन बनाता है, ये केवल तुम जानते हो। अरे खाली है आप। रात में लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते देखते सो, ओहो क्या बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं। ये है ऐसे चित्र को देखते देखते रात को सो जाओ और सुबह क्या करो? अनुभव सुनाओ। चित्र देखते देखते रात में सो जाओ और अनुभव सुनाओ। कभी बाबा कहते हैं कि चित्र देखना बंद करो, चित्र देखना बंद करो। ये भक्ति मार्ग के एक भी चिन्ह तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। मम्मा बाबा को के फोटो को याद नहीं करो। अगर मम्मा अगर माँ की याद में शरीर को छोड़ोगे तो सीधा दुर्गति को पाओगे। अगर ब्रह्मा और मम्मा के को याद की याद में शरीर छोड़ोगे तो सीधा नरक में जाओगे। इसके लिए किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। ये ब्रह्मा तुमको याद करता है क्या? इसकी आत्मा को डायरेक्शन मिला है माँ में कम याद करो, वो तुमको याद नहीं करता, मैं तुमको याद करता हूँ। कभी बाबा ने ऐसा भी बोला है मुरली में। तो फोटो चित्र, अरे क्या कहा था, बिंदी को सामने रख के कभी बाप को याद किया जाता है क्या? सब मुरलियों के ही सारे वाक्य हैं। बाबा ये नहीं चाहता कोई किसी में फंसे, किसी में भी कोई नहीं फंसे। हाँ तभी भी बाबा कहते हैं बाबा को ये फोटो वीटो खींचना पसंद नहीं है, बाबा को फोटो खींचना पसंद नहीं है। ज्यादा फोटो देखते रहना मतलब उसका अधीन नहीं हो जाना है उसके ऊपर। फोटो है तो योग करेंगे, विनाश के टाइम पे फोटो होंगे क्या? विनाश के टाइम पे फोटो होंगे, विनाश के टाइम पे गीत होंगे, विनाश के टाइम पे रेड लाइट होगा, कुछ नहीं होगा, सॉफ्ट म्यूजिक होगा, कुछ नहीं होगा, कोई मेडिटेशन का म्यूजिक नहीं होगा, जहाँ बैठे वहीं पे तुमको आश्चर्य की बनना है।
विनाश का म्यूजिक होगा।
हाय तो त्राही त्राही लाशी लाज रक्त की नदियां दर्दनाक सीन होगा। और बोलो क्या बोला? टावर ऑफ साइलेंस में जाना है, उनका है टावर ऑफ साइंस, जिसमें खौफनाक चीजें बनाते हैं, जिसमें बॉम्ब बनाते हैं, जिसमें जहर डालते हैं, और तुमको तो चलना है टावर ऑफ साइलेंस की तरफ, उड़ जाना है तुमको। हाँ, साइंस भी साइंस की साइलेंस की रचना है, आज बोला। और हाँ, गीता एपिसोड है।
अच्छा, साइंस के बारे में
भैया, तीन स्वरूपों की,
और जो देवताओं की महिमा, स्वयं की महिमा और बाप की महिमा,
बाप की महिमा,
निराकार बाप की महिमा, देवताओं की महिमा।
प्रश्न में था ये, अपनी अवस्था की फुल पॉइंट। और हुंडी चाबी है, और किसकी चाबी है? भाग्य की, दो बातों की, खजानों की चाबी है और भाग्य की चाबी है। तो कोई कोई है जिनको ना तो ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं, ना समझा सकते हैं किसी को, पर दिल से अगर माना बाबा और दूसरों को प्यार से समझा, दिल से समझाते हैं, तो ऐसे जो है वो भी ड्रामा में गायन योग्य बन जाते हैं। भक्ति में इनका भी गायन होता है, ये केवल मानते ज्ञान की गहराई को नहीं जानते, दूसरों को समझा नहीं सकते, जानते नहीं, सुना नहीं सकते, उनका भी गायन होता है। अगर दिल से कहेंगे मेरा बाबा या दिल से समझाएंगे, तो वहां पे बाबा ने बोला कि ये चाबी है भाग्य की। और तो वो है चाबी का। और भंडारी क्या बोला? जैसे माँ सबसे, बाप पहले, बाप बाप भी तो भूखा रहता है, पहले उसको भी वो खाता नहीं, जब तक खिलाता नहीं तब तक। हाँ, और माँ क्या करती है? रूखा सूखा पर बाबा ने बोला यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ, हाँ क्या करना है बोल दिया इधर, बोलो बोलो। और
वो कुर्सियां लगी हैं उसके ऊपर बैठो,
वहाँ बैठो ना, अच्छा है ऊपर राजकुमार। अच्छा चलो, दूसरा पॉइंट। हाँ, निर्विघ्न की संतुष्ट,
निर्विघ्न
आज की मुरली का वरदान है संतुष्ट। ये दूसरा है, स्लोगन है, स्लोगन स्लोगन। और इधर इधर से प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल, प्रवृत्ति मार्ग का सिंबल है कमल। अमल करो कमल बनो, अगर अमल नहीं करते तो कमल भी नहीं बन सकते। उसी में बोरा सेवा में न्यारापन और प्यारापन। हाँ, लगाओ दोनों का बैलेंस। मोह भी सबसे बड़ा विकार है, एक एक विकार भी कम नहीं है। बाबा ने बोला पांच विकारों को जीतना मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है, नहीं उसी दिन से हम और सोचा। और निखिलेश भाई अभी तक शांत है, रुको बोलने दो इधर। और आज बैठे हैं, परसों क्या बैठे थे, कहाँ बैठे थे?
अभी शुरू किया ना, अभी शुरू किया, बताइए।
आज बैठे थे, परसों कहाँ बैठे थे हम?
दो तीन दिन पहले।
अच्छा, और बीज और झाड़ आ नहीं सकती सुना जी।
बात तो सुने है तो स्नेह के पीछे पुराना ध्यान
कुर्बान कर दो, आज भी स्नेह चाहिए। संकल्प बोल और कर्म तीनों में मधुरता, मधुरता ही महानता है। अगर मधुरता नहीं तो महानता नहीं, तीनों में मधुरता हो। और हुंडी क्या बोला था, भरती रहेगी खाली नहीं होगी। तुम ड्रामा अनुसार ही खर्च करोगे, कम ज्यादा नहीं खर्च कर सकते।
ड्रामा
ऊपर ऊपर करने नहीं देगा तुमको, ऊपर नीचे करने नहीं देगा। एक मुरली में बोला घूमो फिरो, खर्च कम करो, फालतू खर्च नहीं करो, दूसरे मुरली में
ड्रामा
पर ये भी बोल दिया। हाँ, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता है, पांच जू मिसल चलते रहता है। एक चक्र को ही 5,000 साल लगते हैं बाबा ने कहा, बिल्कुल धीरे 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 चलता रहता है, टिक 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 होती रहती है। और थोड़ी आत्माएं तो रहती, वो तो बाबा ने बोला है जब कृष्ण का जन्म होता है तो कुछ पतित आत्माएं संसार में होती है,
पतित आत्माएं संसार में होंगी।
जब कृष्ण का जन्म होगा तब पतित आत्माएं संसार में होगी,
लेकिन वो देखेंगे
तो शायद नहीं देख पाएगी। है होती है, कृष्ण का जन्म होता तब तो होती है, देख नहीं पा। संगम युग के, संगम युग दो भागों में विभाजित है ना, एक तो अभी का, एक होगा स्थापना का के तरफ का, एक होगा विनाश के तरफ वाला, एक है स्थापना के तरफ में भी संगम युग ही चलेगा। संगम युग की आयु जब तक लक्ष्मी नारायण गद्दी पर नहीं बैठते तब तक है, मतलब लगभग 125 वर्ष चलेगा वो। ब्रह्मा की आयु 60 वर्ष, नहीं दादा लेखराज की आयु 60 वर्ष, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, संगम युग की आयु 125 कोई बोलते हैं। क्योंकि कृष्ण जब जन्म हो जाएगा उसके बाद 25 साल ले लो और, हाँ। और ब्रह्मा की संगम युग कब तक है, बाबा ने बोला था बाप के आने और जाने के बीच का जो समय है वो संगम युग, मेरे आने और जाने के बीच का समय संगम युग। अभी उसका आना और उसका जाना, उसका जाना कब होगा, जब ब्रह्मा की ऊपर जाएगी तब वो वहाँ खत्म हो रहा है ना संगम युग। अभी तो संगम ब्रह्मा की आत्मा तो अभी भी है,
अभी है।
तो वो गई कहाँ ऊपर?
एक एक ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी आँख लगी।
हाँ ऊपर बैठ जाओ,
एक ऊपर बैठ,
ऊपर 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 नहीं, वो निकलेगा नहीं, उसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ ठीक। तो बाबा के आने की तिथि तारीख नहीं है, ये भी एक मुरली में था, तीन बातें थी उसमें।
हाँ।
शिव बाबा कब ब्रह्मा के तन में आता है
नहीं मालूम, जैसे
नहीं पता, जैसे बच्चा गर्भ में कब आता है ये पता नहीं, पर गर्भ से निकलता कब है उसकी तिथि तारीख है। और संगम युग कब स्थापन होता है कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे बाबा बोलते कुछ कहा नहीं जा सकता, साक्षी भाव से थर्ड पर्सन करने वाला वो, और कुछ कहा नहीं जा सकता। ड्रामा कब चालू हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता, ये प्रश्न उठ नहीं सकता।
ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चल पाएगा कब बाबा प्रवेश कर गया।
हाँ गुप्त है वो, गुप्त रीति से प्रवेश कर। हाँ कोई शक्ति है, कोई शक्ति है इसमें, ऐसा पता चलता है दूसरों को भी। और कोई पॉइंट बहुत है और अच्छी अच्छी पॉइंट है। हाँ लाइट आती रहेगी, साक्षात्कार होगा, पिछड़ी में आने वालों को भी साक्षात्कार होगा। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जितना पहले आने वालों को प्यार किया तो साक्षात्कार करके बाप तुमको बहलाएगा, ये अंत लास्ट में आने वालों का भी हक है,
उनका भी
हक है। जैसे पहले वालों को प्यार किया वैसे आखिरी वालों को भी प्यार करेंगे। बाप का
बच्चों से बाप का साक्षात्कार देने
वालों। और आज बोला एक निमित्त बनेगा सहयोगियों को साक्षात्कार कराने के, निर्मल शंकर दादा। चलो रुको, और इधर भाई जी एक हफ्ते में कुछ याद है? अच्छा सुनते सुनना भी तो योग है ना।
बाबा ने कहा सुनना भी बहुत भाग्य खाली हो,
ये ज्ञान सब नहीं सुन सकते। बाबा ने कहा साहूकार नहीं सुन सकते, विकारी आत्माएं नहीं सुन सकती, साइंस वाले नहीं सुन सकते, प्रकृति को मानने वाले नहीं सुन सकते, एडवांस पार्टी वाले नहीं सुन सकते, देवताएं भी नहीं सुन सकते ये ज्ञान को। ना कभी सुना ना कभी पढ़ा, वाह ऐसा कभी सुना ना पढ़ा। और
नई बातें
हाँ नहीं, ये कोटो में कोई और कोई में कोई, किसी किसी को सर 2 साल लग जाते हैं समझने में। बाबा ने कहा
नई बात है,
ये नई बात है, इसमें आत्मा बिंदी
है,
तो ये तो कभी सुना नहीं, तुम भी नहीं पहले मानते थे। भक्ति उनको खींचती रहती है, आते हैं फिर चले जाते हैं,
फिर भी छोड़ते भक्ति।
हाँ भक्ति उनको खींचती रहती है, भक्ति ये ज्ञान में आने नहीं देती। भक्ति में भी खींच है ना, रस है उसमें,
ज्ञान में आने के बाद भक्ति चलती रहती है,
कई साल कई समय तक चलती रहती है। सेंटरों पे जाओ, माता सेंटर जाती है, जाते जाते मंदिर में भी जाती है, घर पे जाते जाते सेंटर में मुरली सुनी, जाते जाते मंदिर में थोड़ी पूजा करके फिर घर। बहुत है ऐसे, ज्ञान पूरा समझना उसको टाइम लगता है, टाइम लगता है एकदम। राम राज्य में एक ही वंडर है स्वर्ग। और स्वर्ग के बारे में क्या क्या बोला, चलो वो बोल दो अभी पूरा स्वर्ग के बारे में, बहुत सारी बातें इधर उधर उधर उधर। स्वर्ग का नाम सुनते वैसा नहीं है, जिन्होंने स्वर्ग का नाम सुना नहीं है वो भी स्वर्ग का नाम लेते हैं, जिन्होंने स्वर्ग में जो रहे नहीं है वो भी स्वर्ग का नाम लेते रहते हैं। स्वर्ग राशि होते हैं, अरे मुख बंद करो, दुनिया वाले बोलते हैं मुख बंद करो, ये क्या बोल रहे हो, अशुभ बोलते हो तो स्वर्ग राशि हुए। और बोलो स्वर्ग में क्या क्या होगा? याद ही नहीं कुछ,
यही तो विशेषता है।
जमुना के कंटे में तुम्हारे महल होंगे, देवताओं का जैसे छोटा सा गांव है। मुंबई न थी न रहेगी, मुंबई के बोला ना थी न रहेगी, खत्म हो जाएगा सब। और समुन्दर क्या छोड़ेगा, क्या एक ही लहर से हप कर लेगा समुन्दर के, छोड़ेगा समुन्दर किसी को नहीं छोड़ेगा, एक लहर से सबको हप कर लेगा। और क्या बोला स्वर्ग के बारे में? नहीं स्वर्ग के बारे में सोने की खानियां तुम्हारे कारीगर जा जाके लेके आएंगे वहां से, जो अभी की दब गए हैं। हाँ तहखाने अंडरग्राउंड में जो दब गए हैं वहीं से सोने खानियां निकाल निकाल के लाएंगे। अजमेर में सोने का मॉडल स्वर्ग का मॉडल है। म्यूजियम बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, हॉस्पिटल खोलो। और राजकुमार भाई अनाज अथाह होगा और पैर वाइज फर्स्ट क्लास होगी, लक्ष्मी नारायण की ब्यूटी नेचुरल होगी और धरती आकाश समुंदर तुम्हारे हाथों में होगा। और मैं एक हफ्ते का बताओ, एक हफ्ते का बताओ, वहाँ थोड़ी ना देख देख के सोएंगे, ये तो अभी है, वहाँ क्या होगा वो बताओ। स्वर्ग में क्या होगा उसके बारे में बाबा ने थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहते बाबा। गाय फर्स्ट क्लास होगी और जैसा पद होगा उसी अनुसार महल होगा और फर्नीचर होंगे। जैसा पद उसी अनुसार महल और फर्नीचर। और बोलो क्या हो गया? इधर मौन में है दो भाई बोलो। रूप बसंत पशु पक्षी सदाबहार। हाँ वही फर्नीचर भी और महल भी। डिग्री थोड़ी कम हो जाती है लक्ष्मी नारायण की। एक मुरली में बोला था और एक मुरली में बोला था वो तो शादीशुदा है जिसके लिए आकर्षण ज्यादा कृष्ण का है।
कुमार है
कुमार है वो। और भी सब कुछ स्वर्ग के बारे में? रोएंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये बहुत बार था। ये शरीर छोड़ने की भी बात थी, वहाँ आत्मा को पता चलेगा ये शरीर छोड़ के वो शरीर। और एक बात थी, वहाँ पर दिया नहीं लगाएंगे। जैसे तुम यहाँ कोई मरता है तो दिया लगाते हो, सोचते हो कि इस आत्मा को अंधकार मिट जाए, वैसे वहाँ दिया नहीं लगाएंगे कोई मरता है तो। एक मुरली में बाबा ने बोलेगा कोई मर गया तो बस चंडाल के हाथ में दे देंगे, जाओ जला दो खत्म, रोने की दरकार नहीं। चार सब्जेक्ट वहाँ नहीं जरूरत, ज्योति जली हुई है वहाँ पर, वहाँ काल नहीं होगा। हाँ खाल वाली बात भी, वहाँ खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे जैसे सांप छोड़ता है खुशी से। बिजली चमकेगी हाँ वो पीढ़ी बोलेगा
बुढ़ापे तक
वहाँ अकाल मृत्यु असंभव
बुढ़ापे तक।
हाँ थर्ड में हो रहे चलो स्वर्ग वंडर ऑफ द वर्ल्ड
मंडल है।
अच्छा दूसरा प्रश्न है स्वर्ग वंडर है, कल्प का वंडर कौन सा है? संगम युग है या स्वर्ग है? इस पे सोचना एक हफ्ता। संगम युग है या स्वर्ग है? सोचने वाली बात है, सोचना इसको। तो संगम युग ही आएगा फिर तो। आज की मुरली और कोई रह गया है पॉइंट एक हफ्ते में? ये तुमको लॉटरी मिली है सबसे बड़ी। देवता वो हाथों
तो है ना
कौन से ये मुझे बता। अच्छा चलो आज की मुरली में आ जाते हैं। क्या बोला आज? बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दो स्वरूप देखते हैं, एक है पूज्य और दूसरा है पूर्वज। पूज्य के साथ साथ तुम गायन योग्य भी हो, वही तो पूज्य भी हो पूर्वज भी हो और नहीं नहीं पूरा बताओ अच्छे से बताओ। फिर धीरे धीरे उतरने ड्रामा की टिक टिक कैसे चलती है? और बस इतना ही। सृष्टि वृक्ष के कौन हो तुम? पूर्वज हो, ब्राह्मण हो, देवता
ब्राह्मण
मूल तना मूल आधार हो और मूल तना हो। हाँ कल्प वृक्ष ने बोला सृष्टि वृक्ष के मेन तना। और जितनी धर्म की आत्माएं और जितने धर्म हैं, धर्म स्थापक और धर्म की आत्माएं, सर्व धर्म की आत्माओं के तुम पूर्वज हो। कितना बड़ा सम्मान है। अरे रुको 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 जम भारत का भी टाइम है तो सबसे पहला सम्मान है मैं पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ, गायन योग्य हूँ, मूल ब्राह्मण सो देवता हूँ, मूल तना हूँ, सर्वधर्म की आत्मा, सर्वधर्म स्थापक और धर्म की आत्माओं के पूर्वज हूँ, मूल तना हूँ, किसका, किस हमसे ही सर्वधर्म की शाखाएं उत्पन्न हुई है, आदि देव की रचना हूँ, आदि रचना, आदि देव की रचना है, आदि रचना है, उद्धार मूर्त आधार मूर्त, इतने सारे समान है,
आदि देवताओं के भी पूर्वज ऐसा है?
नहीं, आदि देवता के, देवताओं के भी पूर्वज है, तो हम सब है पूर्वज, हम सब है पूज्य, हम सब है गायन योग्य, हम सब है मूल तना, हम सब है मूल आधार, सर्वधर्म की और धर्म स्थापकों की आत्माओं के पूर्वज, जितनी शाखाएं है धर्म की उन सब की उत्पत्ति हम से है, आधार मूल उद्धार मूल, अभी ये सब है पूर्वजों की महिमा, अभी है नेक्स्ट पूर्वजों का जो स्थान है उसकी महिमा, भारत अभी आगे है और
ठीक है, ठीक
भारत की ठीक चल रहा है चलने दो फिर भारत की क्या महिमा है, जो धर्म दूसरे धर्म की आत्मा है, न जानने वाले भी, न जानने वाले भी,
भाषा वाले हैं, कल्चर वाले,
हाँ वो भी इसको बहुत ऊंची दृष्टि से देखते, समान की दृष्टि से देखते, उसमें बाबा ने वो भी, हाँ वो है, और मेन जो एक बोला है कि सर्व प्राप्तियों का आधार, सर्व प्राप्तियों का आधार सहज योग या अन्य कोई भी योग या सर्व अनुभूतियों का आधार का मुख्य केंद्र है भारत,
योग से आकर्षण होता
है, हाँ यही मुख्य केंद्र है सर्व भारत का, जो ये जो है ना क्या प्राचीन महिमा जो है बहुत है,
पूर्वज का समान है,
खान का भी समान है, तो सबसे पहले तो बाबा ने उनकी ये बात कही कि अध्यात्म का केंद्र मतलब अनुभूतियों का केंद्र भारत है, सर्व अनुभूतियों का जो ये आधार है सहज योग या अन्य कोई भी योग, और सर्व अनुभूतियों का केंद्र भारत।
इससे पहले तीन बातें और बताई थी, कर्म, कुल की मर्यादाएं,
अरे वो भूल गया हमारा, हर कर्म का आधार, हर कुल की मर्यादाओं का आधार, हर रीति रसम का आधार हम पूर्वज आत्मा हैं, ये कुछ दिन पहले एक वरदान था ना यहीं से बना हुआ था, आज की मुरली से दो वरदान थे लास्ट दो हफ्ते में, अखंडानंद और ये लास्ट, और ये हर कुल की मर्यादा का आधार हम है, हर कर्म का आधार हम है, रीति रस्म का आधार हम है, जो पूर्वज होते हैं उनको रिस्पेक्ट और स्नेह से देखते हैं, वो भी एक रहता
है,
हाँ। और तो भारत के बारे में, और भारत की क्या महिमा है, पहले तो ये महिमा बोल दी, फिर उसके बारे में भारत का जो शास्त्र है गीता उसकी महिमा, फिर उसके बाद में साइंस, और साइंस के जो क्या कहेंगे उसको, साइंस और साइलेंस की प्रेरणा को प्रेरणा देने वाले भी गीता को मानते हैं, ये पॉइंट है, और यहाँ की जो वस्तु है और चित्र है उनको जान, वो न जानते हुए भी इच्छा है, उनको जानने की इच्छा है, वो बाबा ने उदाहरण दिया ना, हाँ चित्र और चरित्र की तरफ भी उनका आकर्षण होता है, इसके लिए जो भारत के जो पुराने चित्र है और पुरानी वस्तु है उनके तरफ भी उनका आकर्षण है, आज की मुरली के जो शब्द है ना बाबा की बहुत कठिन है एक्चुअली, वैसे के वैसे कठिन है थोड़े, उसका थोड़ा भाव इस तरह से है, पर कुछ कुछ बहुत बहुत डिफिकल्ट है वैसे के वैसे कैच करना,
साइंस वाले भी साइलेंस में जाकर के, हाँ ये कभी और बोला, और फिर आगे संकल्पों की बात थी,
हाँ
अभी संकल्प कर्म और जो आधार है आपके,
ये यहाँ खत्म हुआ भारत के बारे में, अभी नेक्स्ट फिर आपके जो बाबा बोलते हैं, बाबा ने कहा कि ये जो चेक करो या फिर क्या कहा, एक बहुत अच्छी बात है वहाँ पे, मनसा वाचा कर्मणा, ये दूसरी आत्माओं तक पहुँचते हैं क्या,
सारे विषय
ये महामंत्र है, ये मंत्र है, इस मंत्र को चेक करो, ये पहुंचता है क्या तुम्हारा
शक्तिशाली से हाँ।
और तुम क्योंकि तना में हो तो शाखाओं को शक्तियां देते हो, तो तुम्हारी संकल्प शक्ति कहो, संकल्प शक्ति और सर्व शक्तियां तुम सर्व आत्माओं को देते हो, संकल्प की शक्ति और सर्व शक्तियां सर्व आत्माओं तक पहुंचती है तुम्हारी पूर्वज आदे। और उसमें दो तीन अच्छी अच्छी बातें और भी दो तीन है, सारी सृष्टि का समय और स्थिति का आधार तुम आत्माएं हो,
समय और स्थिति,
समय और स्थिति। उसमें उदाहरण दिया जैसे जब सतयुग में थे तो तुम सत्व प्रधान थे, तो वायुमंडल प्रकृति भी सत्व प्रधान थी, तो उसके भी आधार तुम हो, स्थिति के आधार, समय के आधार, सृष्टि के समय और स्थिति के आधार तुम
हो। अमर और अमृत, अमृत और अमर दोनों भाई
है। फिर आगे सृष्टि के समय और स्थिति के आधार तुम हो। हाँ फिर बाबा ने बोला कि ये कर्मों के बारे में है, कर्मों के बारे में है ना, ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब प्रारब्ध स्वतः स्वयं के लिए है, तुम्हारे कर्म का प्रारब्ध सर्व आत्माएं और चक्र से संबंधित है, सर्व आत्माएं और चक्र से संबंधित है। तो ये अगर स्मृति में रहो तो अलबेलापन नहीं आएगा, अटेंशन स्वतः रहेगा, कमजोर और व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, फिर माया की पोजिशन अपोजिशन नहीं होगी, विकार और पांच विकार और पांच तत्व
विदाई ले लेंगे,
पांच विकार विदाई ले लेंगे, तुम ऑर्डर करेंगे विदाई लो आधे कल्प के लिए तो विदाई ले लेंगे, और पांच ये हाँ ऑर्डर करे और वो न ले ये नहीं हो सकता, वो सहयोगी बन जाएंगे, तुमको नमस्कार करेंगे, तुम ऑर्डर करो और वो न माने ये हो नहीं सकता, ये बोलते थे तो ये हो नहीं सकता, मतलब कहने का आधार हम प्रकृति जीत बन जाएंगे, विकारो जीत या माया जीत बन जाएंगे, पांच तत्व पांच विकार हमारे ऑर्डर से चलेंगे, वही हो गया ना उसका अर्थ, माया जीत और प्रकृति जीत। जब तुम इस समान में रहोगे मैं पूर्वज हूँ, ये सारा मैं पूर्वज हूँ का ही चल रहा है, हाँ एक मुरली में कहीं बाबा ने कहा जिसको भी देखते हो तो समझो हम इन सब के दादे परदादे हैं, ऐसे सोचो अपने आप को, ये इन सब के हम दादे परदादे हैं क्योंकि हम पूर्वज है ना,
हम चारों ओर से सारे विश्व की आत्माएं देख रही
हैं, हाँ हम स्टेज पर है ना, वो भाइयों को बोला ना स्टेज का, चलो ये यहाँ पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई यहाँ पर मेरे ख्याल से, अभी निर्मल शांता दादी है, फिर है दीदी है, फिर है पार्टियों से मुलाकात और फिर है मधुबन निवास, तो निर्मल शांता दादी को क्या कहा कि अपने आप को पूर्वज समझते हो, हाँ
सैंपल की बात कर रहे हैं,
हाँ यहाँ पे बात तो निर्मल शांता दादी से कर रहे हैं पर अंदर का सारा दादी के बारे में, कि दादी उधर है तो लोग उसको कैसे देखते हैं, भाषण आती है, वाइब्रेशंस आते हैं, जैसे चांद
चांद को
जैसे चांद बादलों के बीच में छिपा हुआ है, तो वो आत्मा भी कभी किरणें देखती है कभी शिथिलता देखती है, पर उनको पूरा अनुभव नहीं होता इसलिए आकर्षित होती है, और पर इस आत्मा से उनको ये सब हो रहा है, ऐसे कहा अपनापन, जैसे हमारे पूर्वज है हमारे संबंधी हमारे अपने हैं, ऐसा अनुभव वो कर रही है, हाँ। फिर बाबा ने बोला है कि वो एक आत्मा, सबके सब तुम वहां नहीं जाओगे, वो एक आत्मा को भेजा है ताकि उसको देख के फिर लगेगा कि और भी है तो आकर्षित होके आएंगे, जैसे सौदागर धीरे धीरे एक एक निकाल के दिखाता है, एक सब थोड़ी दिखाया जैसे, वैसे ही ड्रामा अनुसार भी हर रत्न अपने अपने समय पर प्रत्यक्ष होगा, अपने अपने समय पर हर रत्न प्रत्यक्ष होगा, एक ही साथ सारे रत्न प्रत्यक्ष हो जाए तो यहाँ कौन आएगा, बाबा ने बोला ना उनको देखकर फिर लगेगा कि ये कहाँ से आए, तो यहाँ आएंगे, यहाँ आकर्षण होगा फिर उनको,
देखेंगे यहाँ तो बहुत माल है,
बाबा ने बोला ना ऐसे कुछ कुछ रत्न छिपे हुए है, वो आगे बोला ना उनको भी तो निकालना है, ऐसे कुछ कुछ रत्न छिपे हुए है, हरे इसी के लिए हरे गांव गांव में ग्राम देवता होता है ना, ग्राम देवता होता है, ग्राम देवी होती है, हर एक गांव में यादगार है, एक ही जगह सारे मंदिर नहीं है, अलग अलग जगह मंदिर है, अलग अलग जगह कुल देवी कहो ग्राम देवी कहो, ऐसे
सिद्ध बाबा होता
है, हर रत्न के अपने अपना समय अपने अपने स्थान पर प्रत्यक्षता होगी, हाँ तो ये थी दादी रतन ना निर्मल शांता दादी से, आगे है दीदी से मुलाकात, उसमें क्या पूछा? प्लेन प्लेन उनका है साइंस का, दादी का है साइंस का प्लेन, तुम्हारा है साइंस से ही साइलेंस निकली, कौन सा पास है? साइलेंस से ही साइंस निकली, उसका विमान तेज है, किसका विमान तेज है दोनों में? साइलेंस का विमान तेज। फिर वो थोड़े शब्द बहुत कठिन है, क्लिष्ट शब्द है, वो आगे जो बोला ना दादी के बारे में बोला कि वो वरदानी मूर्त है, महादानी मूर्त है, उसको वरदान है, क्या वरदान है? लाइट का अनुभव कराएगी अपने वाइब्रेशन से, अपने संकल्पों से दूसरी आत्माओं को। फिर दीदी के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली है वहां पर, वही पूर्वज वाली, कौन सी? स्वयं को पूर्वज के पोजिशन में स्थित कर, स्वयं को पूर्वज के पोजीशन में स्थित कर, स्वयं को तना समझते हुए शाखा की शाखाओं की सर्व आत्मा सब 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 शाखाओं को शक्तियों का जल दो, सबको शक्तियों का जल, जो रुखी सुखी है उनको ताजा करो, जो सुखी आत्माएं हैं मूर्छित नहीं सुखी सुखी जो है उनको ताजा करो। तो आत्माओं को शक्तियों का जल देने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि ये एक दूसरा कर्तव्य है फिर हमारा, हम पूर्वज हैं, नीचे हैं, तना है, मूल आधार है, मूल तना है, तो सर्व आत्माओं को शक्तियों का जल देना। ये भोजन करते करते हम ये एक अभ्यास कर सकते, भोजन करते करते ये समझना कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन कर रहे हैं और हमारे ऊपर पूरा वृक्ष है, हम मूल आधार है, मूल तना, एक इधर गया कि विश्व की सर्व आत्माओं को जा रहा है पानी इधर पी रहे तो उधर शक्तियों का जल उनको पहुंच रहा है ऊपर, एक एक पत्ती को जो भूखी उनको हाँ ये एक पॉइंट रहेगी, स्थूल और सूक्ष्म रूप से सर्व आत्माओं के ऊपर इसका प्रभाव है।
तो ये अच्छा रहेगा ना, स्थूल में खाएंगे हम सूक्ष्म उनको,
उसमें ये भी करो कि जो भी भूखी आत्माएं हैं संसार की, जितने भूखे हैं हम एक खा रहे हैं उनका भी पेट भर रहा है सब ऊपर, एक तो जो अज्ञानी है वो और जो ज्ञानी है उनमें उनमें शक्तियां भर रही है। कृष्ण द्रौपदी के वहाँ पे एक खाता है सबके, दुर्वासा के सब ऋषियों के पेट भर जाते हैं। परमात्मा कभी तृप्त नहीं होता, आत्मा कहती है बाबा मैं तृप्त हुई, एक बुरली थी ना अभी, हाँ बाबा मैं तृप्त हुई और तो ये था दीदी से। फिर उसके बाद मैं पार्टियों से मुलाकात, ये बड़ा पावरफुल है, कौन क्या समझो, नहीं उससे पहले पूछा हर संकल्प और हर कर्म विश्व कल्याण के लिए है, अपने आप को विश्व कल्याणकारी समझो। तो उसका ड्यूटी क्या है, इंचार्ज की ड्यूटी, मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज, विश्व कल्याण के इंचार्ज, तो अपनी ड्यूटी ठीक से करते हो? उधर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते तो क्या होते है? निकाल तो नहीं देते, बाबा ने कहा अपने आप निकल जाता है, किसी ने बोला निकाल देते हैं तो बाबा ने कहा कि अपने आप निकल जाता है यहाँ पर, और तनख्वाह क्या हो जाती है, प्राप्ति की तनख्वाह कट हो जाती है इधर, खुशी कम शक्ति कम,
पता नहीं क्यों खुशी कम,
पता नहीं न मालूम खुशी क्यों कम हो गई स्वतः निकल जाता है ना, ड्रामा निकाल देता है उसको,
दुनिया वालों को निकालते हैं,
दुनिया वालों के भी पहले लेटर लेते हैं, मेमो जाता है कि भाई ये ठीक करो, ठीक नहीं है वार्निंग, एक महीने का नोटिस दिया जाता है, अगर ठीक हो गया कर दिया उसने तो फिर नहीं करते, निकालते नहीं, अगर नहीं ठीक किया तो आउट। हाँ बड़ा एकदम महाभारी कर दिया कुछ पावरफुल काम, तो फिर बाहर चलो, और क्या था ये यहाँ तक हुआ, आगे नहीं नहीं रुको, मधुबन निवासी अभी टाइम, नहीं नहीं कहाँ थे हम, ये यहाँ हो गया, वो हो गया ना तनख्वाह कट जाएगी, आगे 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 क्या है,
ड्यूटी होगी,
ड्यूटी हो गया ड्यूटी, हाँ जो ड्यूटी ठीक से करते हैं फिर ईमानदार की नजर से देखते हैं, फेथफुल की नजर से देखते हैं, बाप भी फेथफुल, एक है बाप के निश्चय, दो दूसरा है सेवा फेथफुल होके करना,
और सेवा
मार्क वो एक ज्ञान दूसरों की नहीं, एक ज्ञान की सब्जेक्ट और एक है सेवा की सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स गिने जाते हैं। फिर है अपनी सेवा और दूसरों की सेवा, दूसरों की सेवा और अपनी सेवा, इसका बैलेंस, इसको कहेंगे विश्व कल्याणकारी। दुआएं सर्व फेथफुल की नजर से देखते हैं, सर्वों को ईमानदार की नजर से देखते हैं, जो ऐसी ठीक से अपना काम करते हैं, एक्यूरेट अपनी सेवा करते हैं। कौन सी ड्यूटी पर? विश्व कल्याण वाली, वो वाली नहीं, दूसरी, ये उसके बारे में चालू है यार, वो है, पर ये जो ड्यूटी चल रही है ना, विश्व कल्याण की ड्यूटी के बारे में चल रहा है, इसको जरा याद रखना बार बार, नहीं तो हम अपनी सेवाओं के ऊपर सोचेंगे।
वो खाली अपनी सेवा रहेगी, विश्व कल्याण गए ना, कोई भी सेवा मिले,
वृत्ति वृत्ति में विश्व कल्याण। आगे ये बैलेंस हो गया, फिर और भी थोड़ा सा है
इसी में,
हाँ थोड़ा सा है। हाँ फिर यहाँ जब माताओं के बारे में चालू हो गया, तो माताओं को राइट 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 माता, फिर बाबा ने बोला जब सेवा में उपस्थित होते हो तो शक्ति स्वरूप में उपस्थित होते हो, पूछा अगर कमजोर हो तो सेवा में भी कमजोरी होगी, इसके लिए माताओं को अपने आप को क्या समझना है, जगत माता, जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी, और महावीर अर्थात भाइयों को, पांडव अर्थात महावीर, तो महावीर समझकर सेवा में उपस्थित होते हो, उनको बोला शक्ति स्वरूप समझकर सेवा में उपस्थित होते हो, इनको बोला महावीर, तो वहां पे स्टेज का उदाहरण दिया, स्टेज से ही जैसे कोई अच्छा स्टेज पे हो एक्ट करता है तो रिस्पॉन्ड अच्छा होता है, तो यहाँ पे भी तुम कौन सी स्टेज पे, नहीं माया की पोजिशन, यहाँ स्टेज स्टेज अच्छी स्टेज स्थिति,
मैं अपनी पोजीशन पर तो माया पोजीशन नहीं कर सकती,
वो हो गया ना पहले पहले ही चले गया, तो स्टेज स्टेज के आधार से सफलता मिलेगी, उनको कहा कि अगर शक्ति रूप होके सेवा करते हो तो सफलता मिलेगी, इनको कहा कि अपनी स्टेज अगर अच्छी है स्टेज के आधार से इनको सफलता मिलेगी, ये कुमारों की बड़ा भाई होती है, महावीर का यादगार बताया, फिर जैसे हनुमान पहाड़, तो यहाँ महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाले, संजीवनी बूटी के लिए हर एक स्टेज पे पहाड़ को राई बनाने वाले, मतलब बड़ी बात को छोटी बनाने वाले और छोटी बात को खत्म करने वाले, छोटी बात को खलास और बड़ी बात को छोटी, कोई बात का आश्चर्य नहीं। चलो फिर लास्ट में मधुबन निवासियों को क्या कहा, अखंड आनंद, योग कभी जिनका खंडन नहीं होता ऐसे अखंड आनंद। हाँ कुछ दिन पहले वरदान था, नहीं है दो विधि, कौन सी किस विशेषता को धारण करेंगे तो अखंड योगी बनेंगे, देखते सुनते डोंट केयर और संग दोष, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना और संग दोष में नहीं आना, ये दो चीजें करेंगे तो अखंड योगी बनेंगे, और जो अखंड योगी है वह अखंड पूज्य है, और आधा आधा कलप पूज्य स्वरूप, आधा कलप जड़ मूर्तियों की पूजा, जड़ मूर्तियों की पूजा, ये है अखंड योगी, अखंडानंद।
अगर अखंड नहीं है तो फिर
तो वहीं पे बोला मधुबन की भूमि, मधुबन का वातावरण, मधुबन का वाइब्रेशन का यहाँ सहयोग है तुमको, यहाँ रहकर भी अगर कोई ना करे उसको क्या कहेंगे। हाँ और यहाँ मुरली खत्म हुई,
कोई बात नहीं आगे आगे वरदान था,
वरदान वरदान किस बारे में था, संतुष्टता के बारे में, ऐसी सेवा करो कि क्या क्या मिल जाए दूसरी आत्माओं को, उमंग हिम्मत उत्साह सब, प्रसन्नता के बारे में, रूहानी पर्सनैलिटी हो जाए आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को अगर हम संतुष्टता, ये प्रसन्नता के बारे में ना, हम अगर प्रसन्न है तो दूसरों को हिम्मत मिल जाएगी, उमंग हो जाए, उमंग उत्साह आ जाएगा, चार बातें कुछ। मुरली इतनी बड़ी है कि वरदान थोड़ा सा छूट गया, वरदान किसको मिलेगा, वरदान जिनके बाप से स्नेह है वो उनको वरदान मिलेगा, ऐसे कुछ ऐसे था ना, जिनका बाप से स्नेह है, बाप से वरदान प्राप्त करना है तो
बाप से वरदान प्राप्त करने के
आधार है दिल का स्नेह,
दिल का स्नेह
तो आज की मुरली से क्या उठाएंगे? सबसे पहले तो इस सोमान में बार बार स्थित होने का अभ्यास कि मैं पूर्वज हूँ, पूजनीय हूँ, पूज्य हूँ, आधार हूँ, मूल आधार हूँ, मूल तना हम है। सब को जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अगर 90 की मुरली है, अगर तुम्हारी चढ़ती कला है तो दुनिया की चढ़ती कला है, अगर तुम्हारी उतरती कला तो दुनिया की अगर उतरती कला, अगर तुम जगे हो तो दुनिया में दिन है, दुनिया जगी हुई है, अगर तुम्हारी ज्योति बुझी हुई है तो दुनिया में रात है, अंधकार है। इस जहान के तुम नूर हो, तुम जहान के नूरों के बगैर दुनिया में वीरानी सी छाई हुई है, अंधकार है संपूर्ण। हाँ, तुम्हारे अंदर अगर व्यर्थ संकल्प चलता है तो दुनिया में व्यर्थ संकल्प चलता है, अगर तुम हिलते हो तो सारी दुनिया हिलती है। दुनिया की धरती कला, सबका आधार हम है, और ऊपर से मधुबन क्या है, टीवी स्टेशन है, ये टीवी स्टेशन है, यहाँ रहने वालों का एक एक संकल्प का प्रभाव संसार में पड़ रहा है। यहाँ पे अमृत वेला सोए है तो संसार की आत्माएं भी सोई है, विश्व में आपकी एक यहाँ गिरेगा तो संसार में आवाज आएगी, जमीन पर नहीं मन में। बाबा यहाँ बच्चे हिलते हैं तो बाबा को ऐसे अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है, एक मुरली में था ना, बाबा को भी उधर पता चलता है कि कोई हिल रहा है। तो बार बार स्वमान का अभ्यास, कोई ना कोई सोमान का गहराई से अभ्यास करना, केवल ये रटना नहीं है, केवल नारे नहीं लगाने, मैं पूर्वजू नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अनुभव डेप्थ में जाना है, उसकी अमृत वाले अनुभव करना है बहुत गहराई से, और मुरली का गहराई से स्टडी करना है डेली। जो भी मुरली आती है ना, 24 घंटे रहती है एक मुरली पढ़ने के लिए, उसका बहुत एक एक पैराग्राफ डेप्थ में जाके गहराई से स्टडी करनी है, ताकि हमारे अंदर वो समा जाए, हमारे रगों में चले जाए, नस नस में चली जाए, क्योंकि ज्ञान जितना ज्यादा रहेगा उतना ऑटोमेटिक सब उसके पीछे आ जाएगा, ऑटोमेटिक योग भी आ जाएगा। अगर ज्ञान ही नहीं तो योग तो छोड़ दो, नहीं हो सकता। ज्ञान बहुत, बाबा ने क्यों, बाबा बोलते हैं मनन कर दो, विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करो, क्यों बोलते रहता है, चीख चीख के बोलते रहता है, पढ़ाई पर अटेंशन दो।
फ्रैक्चर पर आके सुनो,
हाँ स्ट्रेचर, अगर फ्रैक्चर है तो स्ट्रेचर पे आके सुनो, अगर बीमार हमेशा मुरली तो आधार है ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों की परख मुरली से हो जाती होती है। अगर कोई कहता है मेरा बाबा से बहुत प्यार है पर मुरली में इंटरेस्ट नहीं है, बाबा नहीं मानेगा कभी। मुरली धर से प्यार, मुरली मुरली मुरली, एक मुरली में था ना, मुरली मुरली अव्यक्त वाणी थी 2010 की, मुरली 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 तीन बार था। आधार है, श्वास है, प्राण है, जीवदान है, सब कुछ है, खजाना है, लाठी है, इस लाठी को पकड़ पकड़ के जाना है ऊपर,
तो मुरली पकड़ लेना,
एक मुरली पकड़ के उसकी अच्छी स्टडी करनी है डेली, जैसे बच्चे स्टडी करते हैं ना वैसे स्टडी करनी है, एग्जाम के लिए जैसे स्टडी की जाती है ना उस तरह से स्टडी करनी है, ताकि वो हमारे अंदर धीरे धीरे अंदर समा जाए, कर्म करते हुए भी उसका चिंतन चलते रहे, इतना वो हमारे अंदर समा जाए। टाइम तो हो गया, 10 बज गए, अगला कब आ रहा है, संडे 19 को नेक्स्ट डे आ रहा है, तो उस दिन हम थोड़ा बाबा की विशेषता है और उसी दिन की मुरली,
ठीक है
ना, विशेषता अभी उस दिन की जो मुरली है ना उसका अच्छा स्टडी करके आना है, 19 की जो, अच्छा नहीं सूरज भाई का क्लास रहेगा, अच्छा है, ओके चलो देखते
हैं, मंडे
रखते हैं, मंडे कर लेते हैं, तो 20 को, ताकि 2 दिन मिल जाए अव्यक्त वाणी की स्टडी के लिए, दो दिन तो अव्यक्त वाणी का 2 दिन अच्छा स्टडी करना है, स्टडी दो संडे की भी हो जाए, ज्यादा डोज ज्यादा हो जाता है, अव्यक्त समझने मतलब बहुत पावरफुल होते हैं।
तो बाबा सुनाएंगे ना,
बाबा जो सुनाएंगे उसको वो तो करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है, बहुत सहज है,
छोड़ना नहीं है दीदी।
इसमें बाप तुमको बिल्कुल तकलीफ नहीं देते। ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, जो
सौगात है ना, सौगात छोड़ी नहीं जाती
है। अरे खजाना है, जितना लूटना है लूटो। हमारा जो दिन है वो सारा दिन हमारा ज्ञान में बीते, योग में बीते। एक मुरली में संजय भाई बाबा ने बोला है, यदि इस ज्ञान का चिंतन करके छोड़कर और कोई चिंतन करते हो तो वो है आसुरी विचार सागर मंथन। साकार मुरली है एक, जिसमें बोला है आसुरी विचार सागर मंथन। किस में टाइम जा रहा है? नॉवेल पढ़ने में टाइम तो नहीं जा रहा है, टीवी देखने में टाइम तो नहीं जा रहा है, नेट इंटरनेट पे टाइम तो नहीं जा रहा है, मोबाइल पे टाइम तो नहीं जा रहा है,
और भी
वेस्ट है सब।
अगर बाप का बनने के बाद पैसा कमाने में बुद्धि गई तो सारी चीज तो मैं क्या करूं?
बुद्धि हमारी एक तरफ लगी रहे बस। एक मुरली में बाबा ने बोला, अगर किसी को नॉवेल पढ़ते देखो तो क्या करो? उसकी नॉवेल फाड़ दो। इसमें डरना नहीं, एक दो को सावधान करना है, यहाँ तक बाबा ने बोला है। टीवी देखना मतलब टीवी को क्या कहते हैं बाबा? टीवी सिंची माँ। उसका जो देखा हुआ रहता है उसका प्रभाव इतना अंदर पक्का बैठ जाता है, जो किताब पढ़ी हुई भूल जाती है, चर्चा किया हुआ भूल जाता है, पर जो देखा है टीवी में वो कभी नहीं भूलता। वो क्योंकि 3D थ्री डायमेंशनल है, चलता फिरता है, वो बिल्कुल पक्का बैठ जाता है। वो इस स्वप्न में निकलेगा बाहर, हर चीज में निकलेगा। इसके लिए हमारा एक एक संकल्प स्वच्छ हो, पवित्र हो, कहीं पर भी नहीं जाए संसार में हमारी बुद्धि, आंख डूबनी नहीं चाहिए कहीं पर भी। ज्ञान और योग, इसके लिए हमारे पास दिन भर से अभी इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। मुरली तो है, एक ही मुरली है, 24 घंटे का टाइम है, 23 टोटल। उसमें जहां जैसे उसको एडजस्ट करना है उस पे मास्टरी करनी है, ताकि बुद्धि में खाली ज्ञान ही गूंजता रहे, हल्का फुल्का एकदम बुझ ना जाए। जगदीश भाई बोलते हैं ना, सारे दिन भर जो ज्योत है सुबह जो जग जाती है वो बुझ ना जाए, थोड़ी 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 जगती रहे, बीच बीच में याद होते रहे, बीच बीच में हल्का फुल्का योग चलता रहे। ऐसा नहीं कि 4 घंटे निकल गए और फिर बाद में याद आया, अरे बाबा भी है क्या? बाद में याद आता है ना, भूल जाते हैं सेवा में, सेवा भुला देती है याद को, सबको, जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूल जाते। ठीक है, तो 18 तारीख की मुरली और ये हफ्ते, हाँ 20 को मंडे ना,
मंडे
ओम शांति।
भाई रुको रुको, एक मिनट के लिए दे रहे हैं।